ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे आठ पाव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे संतों के संग और सत्शास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है, उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तरण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान महापुरुष सर्वदा समाधि में है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस चित्त के दो प्रवाह है, एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है, जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे रामचंद्र जी, वाद भी दो प्रकार के हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। जो जैसा वाद करता है उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है और वैसा ही रूप उनका हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनका वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं तो उनका वही रूप होता है। इससे उस पद को पाकर तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओ। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 19। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक पुरातन इतिहास है जो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा है, उसे तुम सुनो। इसी जम्बूद्वीप के किसी स्थान में महेंद्र नाम एक पर्वत है। वह कल्प वृक्ष था, और उसकी छाया के नीचे देवता और किन्नर आकर विश्राम करते थे। उस पर्वत के बड़े शिखर बहुत ऊंचे और ब्रह्मलोक पर्यंत गए थे, जिन पर देवता सामवेद की ध्वनि करते थे। किसी ओर जल से पूर्ण बड़े मेघ विचरते थे, कहीं पुष्प से पूर्ण लता थी, कहीं जल के झरने बहते थे और कंदरा के साथ उछलते मानो समुद्र के तरंग उछलते थे। कहीं पक्षी शब्द करते थे, कहीं कंदरा में सिंह गरजते थे, कहीं कल्प और कदंब वृक्ष लगे थे, कहीं अप्सरागण विचरती थी तो कहीं गंगा का प्रवाह चला जाता था। किसी स्थान में महासुंदर रमणीय रत्नमणि विराजते थे। वहां गंगा के तट पर एक उग्र तपस्वी स्त्री संयुक्त तप करता था, और उसके महासुंदर दो पुत्र थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो पुण्यक नामक एक पुत्र ज्ञानवान हुआ, पर पावन अर्ध प्रबुद्ध और लोलुप अवस्था में रहा। जब कालचक्र के फिरते हुए कई वर्ष व्यतीत हुए तो उस दीर्घ तपस्वी का शरीर जर्जरीभूत हो गया, और उसने शरीर की क्षणभंगुर अवस्था देखकर चित्त की वृत्ति देह से विरक्त अर्थात विदेह होने की इच्छा की। निदान दीर्घ तपा की पर्यष्ट का कलना रूप शरीर को त्यागती भई, और जैसे सर्फ कंचुली को त्याग दे तैसे ही पर्वत की कंदरा में जो आश्रय था उसमें उसने शरीर को उतार दिया और कलना से रहित अचैत्य चिन्मात्र सत्ता स्वरूप में स्थित हुआ, और राग द्वेष से रहित जो पद है उसमें प्राप्त हुआ। जैसे धूम्र आकाश में जा स्थित हो तैसे ही चिदाकाश में स्थित हुआ। तब मुनीश्वर की स्त्री ने भर्ता का शरीर प्राणों से रहित देखा, और जैसे दंड से कमल कटा हो तैसे ही चित्त बिना शरीर देखती भई। निदान चीर पर्यंत योग कर्म कर उसने अपना शरीर प्राण और पवन को वश करके त्याग दिया, और जैसे भवरा कमलिनी को त्यागे तैसे ही शरीर त्याग कर भर्ता के पद को प्राप्त हुए। जैसे आकाश में चंद्रमा अस्त होता है और उसकी प्रभाव उसके पीछे अदृश्य होती है, तैसे ही दीर्घ तपा की स्त्री दीर्घ तपा के पीछे अदृष्ट हो गई। जब दोनों विदेह मुक्त हुए तब पुण्यक जो बड़ा पुत्र था उसने दैहिक कर्म में समाधान होकर कर्म करने लगा, पर पावन माता पिता बिना दुख को प्राप्त हो शोक करके उसका चित्त व्याकुल हो गया और वन कुंजों में वह भ्रमने लगा। पुण्यक जो माता पिता की देहाधिक क्रिया करता था जहां पावन शोक से विलाप करता था आया, और भाई को शोक संयुक्त देखकर पुण्यक ने कहा, हे भाई शोक क्यों करते हो? जो वर्षा काल के मेघवत आंसुओं का प्रवाह चला जाता है। हे बुद्धिमान तुम जिसका शोक करते हो, तुम्हारे पिता और माता तो आत्मपद को प्राप्त हुए हो जो मोक्षपद है, वही सब जीवों का स्थान है और ज्ञानवानों का स्वरूप है। यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप एक ही है तो भी ज्ञानवान को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं भासता। वे तो ज्ञानवान थे और अपने स्वरूप में प्राप्त हुए हैं, उनका शोक तुम किस निमित्त करते हो? यह क्या भावना तुमने की है? संसार में जो शोक मोक्षदायक है वह तू नहीं करता, और जो शोक करने योग्य नहीं वह करता है। न वह तेरी माता थी, न वह तेरा पिता था, और न तो उनका पुत्र है। कई तेरे माता पिता हो गए हैं और कई पुत्र हो गए हैं। असंख्य बार तू उनका पुत्र हुआ है और असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए हैं, और अनेक पुत्र मित्र बांधवों के समूह तेरे जन्म जन्म के बीच हो गए हैं। जैसे ऋतु ऋतु में बड़े वृक्षों की शाखाओं में फल होते और नष्ट हो जाते हैं तैसे ही जन्म होते हैं, तो काहे को पिता माता के स्नेह में शोक करता है? जो तेरे सहस्त्रों माता पिता होकर बीत गए हैं उनका शोक काहे को नहीं करता? जो तो इस जन्म के बांधवों का शोक करता है तो उनका भी शोक कर। हे महाभाग, जो प्रपंच तुझक दृष्टि आता है वह जगत ब्रह्म है। परमार्थ में न कोई जगत है, न कोई मित्र है और न कोई बांधव है। जैसे मरुस्थल में बड़ी नदी वास्ती है परंतु उसमें जल का एक बूंद भी नहीं होता, तैसे ही वास्तव में जगत कुछ नहीं। बड़े बड़े लक्ष्मीवान जो छत्र चामरों से संपन्न शोभते हैं वे विपर्यय होंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी तो चंचल स्वरूप है, कोई दिनों में अभाव हो जाती है। हे भाई, तू परमार्थ दृष्टि से विचार कर, देख न तू है और न जगत है। यह दृश्य भ्रांति रूप है, इसको हृदय से त्याग। इसी माया दृष्टि से बार बार उपजता है और विनष्टता है। यह जगत अपने संकल्प से उपजा है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं है। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपी नदी है और उसमें शुभ अशुभ रूपी तरंग उपजते और फिर नष्ट हो जाते हैं। पुण्यक बोले, हे भाई, तेरे कई माता और कई पिता होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूल के कण के उड़ते हैं, तैसे बांधव है, न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है और उसमें जैसी भावना फुरती है तैसे ही हो भासती है। बांधव, मित्र, पुत्र आदि को में जो स्नेह होता है सो मोह से कल्पित है, और अपने मन से माता पिता आदि संज्ञाकल्पी है। जगत प्रपंच में जैसे संज्ञाकल्पता है तैसे ही हो भासती है। जहां बांधव की भावना होती है वह बांधव भासता है, और जहां और की भावना होती है वह और ही भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। तैसे ही न कोई बांधव है और न कोई शत्रु है। सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है, उसमें अपने और की कल्पना कोई नहीं। और जो कुछ देहादिक है वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं, उनमें अहं सत्ता कौन है और अहंकार चित्त बुद्धि और मन कौन है। परमार्थ दृष्टि से यह तो कुछ नहीं है, विचार किए से न तू है न मैं हूं, यह सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है, उसमें तेरी माता कौन है और पिता कौन है, यह सब मिथ्या भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। शरीर से देखिए तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्व से रचा जड़ रूप है, उसमें चैतन्य एक रूप है, और अपना और पराया कौन है। इस भ्रम दृष्टि को त्याग के तत्व का विचार करो। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त शोकवान हुए हो, जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो, तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक क्यों नहीं करते। अनेक पुष्पों और लताओं में तू मृग पुत्र हुआ था, उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता। अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी विचरते थे, वह तू हाथी का पुत्र था, उन हस्ती बांधवों का शोक क्यों नहीं करता। एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे, और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता। फिर नदी तालाब में तुम मच्छ हुए थे और उसमें मच्छ योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? दशार्णव देश में तू काक और वानर हुआ, तुषारण देश में तू राजपुत्र हुआ और फिर वन काक हुआ, बंग देश में तू हाथी हुआ, विराज देश में तू गर्दभ हुआ, मालव देश में सर्प और वृक्ष हुआ और बंग देश में गृद्ध हुआ, मालव देश के पर्वत में पुष्पलता हुआ और मंदराचल पर्वत में गीदड़ हुआ, कौशल देश में ब्राह्मण हुआ, बंग देश में तीतर हुआ, तुषार देश में घोड़ा हुआ, कीट अवस्था में हुआ, एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ और 15 महीने वहां रहा, एक वन में तड़ाक था, वह कमल पुष्प में भ्रमरा हुआ और जम्बूद्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृत्तांत मैंने कहा है। जैसे तेरी वासना हुई है तैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूं कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जान के तू किस किस बांधव का शोक करेगा और किस किस में स्नेह करेगा। जैसे वे बांधव थे तैसे ही यह भी जान ले, मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं, जिन जिन में मैंने जन्म पाया है और जो जो बीत गए हैं तैसे ही सब मेरे स्मरण में आते हैं और अब मुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, त्रिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाक के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, बंग देश में वृक्ष हुआ, इन वन पर्वत में बड़ा वृष्ट होकर विचरा, पौंड्र देश में राजा हुआ, सिंहाचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ, जहां तू मेरा बड़ा भाई था, फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्रांता हूं। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे सब कहा है और सब मुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही है। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता? यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भ्रम रूप है, इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब प्रपंच भ्रांति रूप है, इनकी वासना त्याग जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जहां ज्ञानवान प्राप्त होता है। इससे हे भाई, यह तो जीव भाव अर्थात जन्म मरण ऊर्ध्व जीना और फिर गिरना व्यवहार है, उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते, वे दुख के निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं। जो भाव अभाव और जन्म मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद है तो उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको न सुख है न दुख है, न जन्म है न मरण है, न माता है न पिता है, तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, यह जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटुवा ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधायमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष है, उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुख रूप है। और जो अज्ञानी है, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे देखने वाले साक्षीभूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंग से रंजित नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंजित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधव के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में संतुष्टवान होता है। इससे मिथ्या देहादिकों की भावना को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परमानंद स्वरूप में तू भी स्थित हो। तू तो पर ब्रह्म और निर्मल रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावन को बोध उपदेश किया, तब पावन बोधवान हुआ। तब दोनों ज्ञान के पारगामी और निरीक्षित आनंदित पुरुष होकर चिरकाल पर्यंत विचरते रहे और फिर दोनों विदेह मुक्त निर्वाण पद को प्राप्त हुए। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही प्रारब्ध कर्म के क्षीण हुए दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार तू भी जान, जैसे वे मित्र बांधव धन आदि के स्नेह से रहित होकर विचरे, तैसे ही तुम भी स्नेह से रहित होकर विचरो। और जैसे उन्होंने विचार किया था, तैसे ही तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार में किसकी इच्छा करे और किसका त्याग करे, ऐसे विचार कर अनंत इच्छा और तृष्णा का त्याग करना, यही औषध है। तृष्णा रूपी इच्छा का पालना औषध नहीं है, क्योंकि पालने से पूर्णता कदाचित नहीं होती। जो कुछ जगत है, वह चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के नष्ट हुए हैं संसार दुख नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ के पाने से अग्नि बढ़ता जाता है और काष्ठ से रहित शांत हो जाता है, तैसे ही चित्त की चिंतना से जगत विस्तार पाता है और चिंतना से रहित शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ध्येय वासनावान त्यागी रूप रथ पर आरूढ़ होकर रहो। करुणा दया और उदारता संयुक्त होकर लोगों में विचरो और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से रहित हो रहो। यह ब्रह्म स्थिति मैंने तुमसे कही। निष्काम निर्दोष और स्वस्थ रूप को पाकर फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। परम आकाश ही इसका हृदय मात्र विवेक है और बुद्धि इसकी सखी है, जिसके निकट विवेक और बुद्धि है, वे परम व्यवहार करते भी संकट को नहीं प्राप्त होते। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे, तब संकट और दुख से मोहित न होंगे। नाना प्रकार के दुख, संकट, स्नेह आदि विकार रूप जो समुद्र है, उसके तरने के निमित्त एक अपना धैर्य रूपी बेड़ा है और कोई उपाय नहीं। सो धैर्य क्या है? दृश्य जगत से वैराग्य और सच शास्त्र का विचार। इन श्रेष्ठ गुणों के अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार ही है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भी नहीं प्राप्त होता, वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य जगत कोश में उपजता है और मन तृष्णारूपी ताप से रहित नहीं होता, तब तक कष्ट है। और जब आत्म विवेक से मन पूर्ण होता है, तब सब जगत अमृत रूप भासता है। जैसे जूती के पहनने से सब पृथ्वी चर्म से वेष्टित सी हो जाती है, तैसे ही पूर्ण पद इच्छा और तृष्णा के त्यागने से पाता है। जैसे शरद काल का आकाश मेघों से रहित निर्मल होता है, तैसे ही इच्छा से रहित पुरुष निर्मल होता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके वश हुए चित्त शून्य हो जाता है। और जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था, तैसे ही आत्मजल से रहित समुद्रवत चित्त शून्य हो जाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णारूपी चंचल मरकटी रहती है, उसको वह स्थिर होने नहीं देती और सदा क्षोभायमान होती है। और जिसका चित्त तृष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह गोपद्वत सुगम हो जाते हैं और महाकल्प अर्धनिमेशवत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसा शीतल नहीं, जैसा शीतल चित्त तृष्णा से रहित होता है। पूर्णमासिका का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा नहीं, जैसा इच्छा से रहित मन शोभायमान हो जाता है। जैसे चंद्रमा की प्रभा को मेघ ढाप लेता है और शुद्ध स्थानों को अपवित्र लेपन मलिन करता है, तैसे ही अहंतारूप पिशाचनी पुरुषों को मलिन करती है। चित्तरूपी वृक्ष के बड़े बड़े टास दिशा विदिशा में फैल रहे हैं, सो आशा रूप है। जब विवेक रूपी कुल्हाड़े से उनको काटेंगे, तब अचित पद की प्राप्ति होगी और तभी एक स्थान रूपी चित्त रहेगा। अविवेक और अधैर्य तृष्णा शाखा संयुक्त है, उनकी अनेक शाखा फिर होंगी। इसलिए आत्म धैर्य को धरो कि चित्त की वृद्धि न हो। उत्तम धैर्य करके जब चित्त नष्ट हो जावेगा, तब अविनाशी पद प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, उत्तम हृदय क्षेत्र में जब चित्त की स्थिति होती है तब आशा रूपी दृश्य नहीं उपजने देती, केवल बाह्य रूप शेष रहता है। तब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्त रूप होगा, तब मोक्ष रूप विस्तृत पद प्राप्त होगा। चित्त रूपी उलूक पक्षी की तृष्णा रूप स्त्री है। ऐसा पक्षी जहां विचरता है तहां अमंगल फैलाता है। जहां उल्लू पक्षी उचरते हैं वहां उजाड़ होता है। विवेक आदि जिससे रहित हो गए हैं ऐसे चित्त की वृत्ति से तुम रहित हो रहो। ऐसे होकर विचारोगे तब अचिंत्य पद को प्राप्त होंगे। जैसी जैसी वृत्ति फुरती है तैसा ही तैसा रूप जीव हो जाता है। इस कारण चित्त उपशम के निमित्त तुम वही वृत्ति धरो जिससे आत्मपद की प्राप्ति हो। हे महात्मा पुरुष, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और इष्णा उपशम हुई है और जो भाव अभाव से मुक्त हुआ है वह उत्तम पद को पाता है, और जिसका चित्त आशर विफासी से बांधा है वह मुक्त कैसे हो। आशा संयुक्त कदाचित मुक्त नहीं होता और सदा बंधयमान रहता है। हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।